Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 761.
विचार तो जड़े जो पूर्ण होवे भागरे जो मन चाहो पिया जी सो तो गिना न दृष्टे जागरे जी मौलाना हज़रत इमाम तो सलवात पढ़ मोमिनो अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाज़ दफ़ा हम कलिमा भी पढ़ते हैं तो उसमें हम जरा भूल करते हैं। मुझे एकाएक ख्याल आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन मत बोला करो। बाज दफा मैंने मैयत में भी ये चीज सुनी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, ये बेअदबी होती है। हमारे मुसलमान भाई सुनते हैं तो हमारी जहालत के ऊपर बुरा महसूस करते हैं, वो समझते हैं कि इस्माइली लोग मुसलमान नहीं, और वो लोग ऐसा भी समझते हैं कि इनको कोई कहने वाला नहीं। मोहम्मद अर रसूलुल्लाह, मोहम्मदिन भी गलत है, मोहम्मदुन भी गलत है। मोहम्मदुन रसूलुल्लाह कभी मत बोलो, मोहम्मद अर रसूलुल्लाह, अशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अगर पढ़ा लिखा शख्स है तो उसका जो प्रोनंसिएशन है मुहम्मदों आधी नाक और नाक में से बोलता है, मगर उस तरह करने की जरूरत नहीं, मुहम्मदन रसूलुल्लाह। फिर क्या इस गिनान के अंदर किसी बात का खुलासा किया गया और जोर दिया गया कि अपने खुदावंद की, अपने मालिक की हमेशा बंदगी करो। सेवा हमारे गिनानों के अंदर जहां जहां भी यूज हुआ है शब्द सेवा, उसका मतलब खिदमत भी है, जिसको हम सर्विस कहते हैं जैसे कि सेवा, मगर उसका मतलब बंदगी भी है, इबादत। अरबी जबान का लफ्ज जो इबादत है उसका मतलब गुलामी, अब्द का मतलब गुलाम, नौकर नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं, गुलाम जो खरीदा हुआ हो रहे। और इबादत का मतलब गुलामी, फारसी जबान में बंदा कहते हैं अब्द को, अब्द अरबी भाषा है, बंदा फारसी भाषा है। इबादत अरबी में है, बंदगी फारसी में है, दोनों का एक ही मतलब है। बंदगी का मतलब खुदा की गुलामी, बंदे का मतलब खुदा का गुलाम, अब्द का यही मतलब है, इबादत का यही मतलब है। और इसी चीज को सेवक और सेवा कहा गया। प्राकृत जबान भाषा में जो हमारे गिनानों के अंदर बहुत है उसमें यही बात हो गई, यारा शाहजा दीदारी सेवक जुगा जुग जस मोमने के जिन लदरोई भेद। ए यारा, ए दोस्तों, खुदा के बंदे, सेवा करने वाले, दीदार लेने वाले हर जमाने के अंदर होते हैं। शाजा दीदारी सेवक जुगा जुग, हर जमाने में खुदा के मोमन उसके भगत होते हैं। और संस्कृत में जिसको हम भक्ति कहते हैं उसका मतलब भी गुलामी है। भक्त कहते हैं कि जो कोई भी आशा रखे बगैर सेवा करे उसको भक्त कहते हैं। और भक्त का मतलब भी गुलाम है, भक्ति का मतलब गुलामी। उठते बैठते उसी को याद करना, उसी का काम करना, उसी की भलाई करना, जो कुछ है उसका ही किया जावे उसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति भी गुलामी है। निश दिन यानी हर दिन हर रोज अपने सच्चे साहिब को याद करो, सेवा करो, बंदगी करो, इबादत करो और अपने दिल के अंदर विवेक विचार पैदा करो। विवेक विचार दिल मान लो, यानी विवेक विचार करो। विचार हर कोई करता है, बच्चा भी करता है, आलिम भी करता है, जाहिल भी करता है, मगर पीर ने यहाँ विवेक विचार के शब्द लगा के एक बड़ी अच्छी बात हमको कही। ऐसा विचार के जो विवेकी हो रहे। विवेक का मतलब डिक्शनरी के हिसाब से सिस्टम होता है, युक्ति जिसको कहते हैं। विवेकी आदमी हम उसको कहते हैं कि जिसका बिहेवियर अच्छा होवे, जिसमें एटिकेट होवे, जिसमें आवड़त होवे, जिसमें सिस्टमैटिक काम करने की शक्ति होवे, उसको हम विवेकी कहते हैं। विवेकी आदमी जो होता है हम उस आदमी को कहते हैं कि जिस आदमी की सोसाइटी में इज्जत होवे और बड़ा डिसिप्लिन वाला आदमी होवे। तो विवेक का मतलब अच्छा बिहेवियर, डिसिप्लिन, सिस्टम और किसी चीज को अच्छी तरह करने की आवड़त, यानी उसका रियल नो हाउ होवे, उसको हम विवेकी कहते हैं। फिर कहते हैं फिर कि विवेक विचार तो जड़े, जड़े यानी मिले, तुम्हारे हाथ लगे। विवेक विचार तुमको तब मिले, तब प्राप्त होवे कि जो पूर्ण होवे भाग। अगर तुम पहले से लकी नसीबवंत होवो, तुम्हारे भाग होवे, तो तुमको विवेक विचार मिले। अगर तुम ये चाहते हो जो मन चाहो पिया सो, अगर तुम अपने मन के अंदर मौला से मोहब्बत करते हो, तो विवेक विचार मिलने का तरीका बताते हैं। जो मन चाहो पिया सो, तो ज्ञान दृष्टि जाग, तो इलम हासिल करो, इलम की आंख से जागो। ज्ञान दृष्टि जाग उसका मतलब यह है कि इलम की आंखों से जागो। जहालत इग्नोरेंस की आंखों से सो जाओ, मतलब ये कि उसको निकाल डालो, जागृति पैदा करो, अवेकनिंग तुम्हारे दिल में पैदा होनी चाहिए, और वो भी ज्ञान दृष्टि से। ज्ञान दृष्टि का मतलब वो आंख के जिसमें इलम नजर आता होवे, मतलब ये है अकल, इलम। इलम का मर्तबा बहुत है। इलम की आंख को नूर की आंख कहा गया। हकीम नासर खुसरो ने लिखा है कि अक्ल और इल्म खुदा का नूर है, और ये बात सच है। इल्म और अक्ल जो है वो खुदा का नूर है। कुरान शरीफ में अल्लाह ने यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम की बाबत जिक्र करते करते फरमाया है कि अल्लाह जिस पर राजी होता है उसको इल्म और हिकमत की बख्शीश देता है। यानी इल्म और हिकमत, इल्म का मतलब तो आपको मालूम है, हिकमत का मतलब विजडम। हिकमत कहते हैं विवेक को, हिकमत टैक्टफुलनेस, सिस्टम, डिसिप्लिन, एटिकेट, ये हिकमत में आते हैं। तो इल्म और हिकमत ये विवेक है। हिकमत जो है यही विवेक है कि विवेक विचार तो जड़े जो पूर्ण होवे भाग। यहाँ पूर्ण भाग का मतलब जो तुमने पहले से ऐसी कमाई की होवे तो तुमको खुदा इल्म और हिकमत देवे, विवेक विचार देवे। उस कमाई करने का रास्ता यह है मौला से मोहब्बत करो और ज्ञान हासिल करो। رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمان فرمایا, کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ یا نبی عابد میں اور عالم میں کیا فرق ہے؟ عابد اس کو کہتے ہیں جو تسبیح لے کے عبادت کرے, جماعت خانے مندر مسجد میں بیٹھا رہے, خدا کو یاد کرتا رہے, ذکر کرتا رہے, اس کو عابد کہتے ہیں. عالم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو علم کی خبر ہوے. لازم نہیں کہ عابد عالم بھی ہوے, علم کے بغیر بھی عبادت تو ہوتی ہے, لیکن کبھی علم کے ساتھ عبادت ہوے تو اس کا درجہ بہت بڑا ہے. نبی کو عرض کی گئی, یا نبی عالم اور عابد میں کیا فرق ہے؟ حضور نے فرمایا, جس طرح مجھ کو تمہارے اوپر خدا نے بڑائی دی ہے اس طرح سے, یعنی نبی کو, نبی جس طرح لوگوں سے بڑا ہے ایسا عابدوں کے اوپر عالم کا درجہ بڑا ہے. عالم کا درجہ عابد کے اوپر اس طرح بڑا ہے کہ جس طرح دنیا والوں کے اوپر نبی کا درجہ بڑا ہے. علم کو بہت بڑا درجہ دیا گیا. آپ کبھی اسلام کی ہسٹری پڑھو, اور ضرور پڑھو مومنوں, ضرور پڑھو. گجراتی میں ملتی ہے, انگلش میں ملتی ہے, اردو فارسی آپ جانتے نہیں, لیکن گجراتی میں, انگلش میں ہماری ہسٹری ملتی ہے. میں بہت دفعہ جماعتوں کے پاس عرض کر چکا ہوں کہ آپ ہر روز ایک کلاک ضرور کوئی نہ کوئی واچن کرو اچھی چوپڑی کا. اچھی چوپڑی یعنی ہسٹری پڑھو, مولا کے فرمان پڑھو, فلسفی پڑھو, لوگوں کی بایوگرافی پڑھو, مہان لوگ جو ہیں مہاتما ان کی جو جیون چرتر ہے وہ پڑھو. اس میں سے انسان کو بہت کچھ جنان ملتا ہے. دوسروں کو دیکھ کر بھی انسان جنان لیتا ہے. جب انسان کے جنان چکشو, جنان چکشو یعنی چکشو آنکھ کو کہتے ہیں, وہی جنان درشتی یعنی جنان چکشو جب انسان کے جاگ اٹھتے ہیں تو پھر وہ ہر چیز میں سے جنان پیدا کر لیتا ہے, جنان حاصل کر لیتا ہے, ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے. شخص آدھی جا رہے تھے ایک چھوٹے سے گاؤں میں سے پسار ہوئے, بچے رستے میں کھیل رہے تھے. چھوٹا سا گامڑا تھا, رستے تنگ تھے, بچے زیادہ تھے, بوڑھا آدمی اور یوں بھی اس کے شریر بہت دبلا پتلا تھا. آپ کو معلوم ہے بچپن میں شرارت انسان کی نیچر ہے, اور بعض بچے تو بہت شریر مسچیوس ہوتے ہیں. پھر امک بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کسی موٹے آدمی کو دیکھ کے ہنس پڑتے ہیں, کسی بوڑھے کو دیکھ کے چھیڑنے کا, چکوزا کرنے کا دل ہو جاتا ہے. تو یہ بچپن کی نیچر ہے. شیخ سعدی بیچارے نکلے, لڑکے بہت تھے تو کبھی ادھر جاوے کبھی ادھر جاوے, سیدھا تو جا نہیں سکے, تو لڑکوں کے اندر سے ایسا ایسا جانے لگا. تو کسی بچے کو شرارت سوجھی, پیچھے سے اس کی پگڑی کا چھیڑا کھینچ لیا, پگڑی گر پڑی تو دوسرے بچے نے فٹ بال کی طرح کک ماری, پگڑی ادھر چلی گئی. شیخ سعدی بوڑھا آدمی پگڑی لینے گیا تو کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا تو زمین کے اوپر لمبا ہو گیا. بڑی بےچارے کی دردت ہوئی, مہان مصیبت سے پگڑی کھینچ کھانچ کے بھاگا اور بچوں سے جان چھڑائی. بوڑھا آدمی تھا, ہانف گیا, تھوڑی دور جا کے ایک اوٹے کے اوپر ہانپتے ہانپتے بےچارا بیٹھ گیا, تھوڑا سا آرام لے رہے. آرام لے کے کھڑا ہونے لگا تو ایک بچہ سامنے سے آیا. تو سامنے سے وہ بچہ آیا, اتنی دیر میں اس نے اپنی پگڑی باندھ لی تھی, تو جھٹ سے پھر ذرا پھیر گیا کہ شاید یہ بچہ پھر میرے سے کچھ شرارت کرے گا. بچہ جب نزدیک آیا تو اس نے ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے اس کو سلام کیا, بابا سلام. شیخ سعدی کو بہت عجائبی لگی, نزدیک آیا, بچہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. شیخ سعدی نے اس کے سر پہ ہاتھ پھرایا, پیار سے پوچھا, بیٹا تم بڑے ادب والے ہو. ادب یعنی ویویک, ریسپیکٹ فل ہو. تم کو یہ ادب کس نے سکھایا؟ کہتا میرے ماں باپ نے سکھایا, لیکن آپ کی حالت دیکھ کے ان لوگوں سے سیکھا, بے ادبوں سے سیکھا. उन लड़कों ने आपके साथ जो हालत की बहुत बुरा किया, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। देखो विवेक, जो आलिम शख्स होता है वो हर चीज में से कुछ न कुछ इलम सीख लेता है, उसको कुछ न कुछ मिल जाता है, फूलों से मिलता है, जानवरों से मिलता है, हवा पानी से मिलता है, समुन्द्र के किनारे पे जाके इलम सीख लेता है, कुछ न कुछ हर चीज में से ढूंढ लेता है। तो ये जो जिनान चक्षु हैं वो ऐसे हैं। मैंने एक दफा आपको बात सुनाई, इकबाल, मोहम्मद इकबाल, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मशहूर कवि, 1938 में गुजर गया। एक दिन लॉरेंस गार्डन में लाहौर सुबह के वक्त घूमने निकला, एक बाकड़े के ऊपर, बेंच के ऊपर बैठ गया। सुबह की ठंडी ठंडी हवा आती थी, नेचर की इस खूबसूरती के अंदर ऐसा खोया गया कि उसने ये समझा कि मैं भी नेचर का एक भाग हूं, अंग हूं। आलिम आदमी जब अपने अंतकरण के अंदर चले जाता है तो जैसा पीर ने गिनान में फरमाया है कि इस घट के अंदर 7 समुन्दर का वासा है, घट में 9 खंड प्रथमी, घट में है केवल ऐसा, सब कुछ अंदर है क्योंकि खुद खुदा अंदर है। अगर खुदा अंदर है तो खुदा की सब चीजें भी अंदर है। आलिम के लिए कोई मजबूरी नहीं। हवा चलती 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 गुलाब के फूलों की एक डांखड़ी झुक गई, हवा की वजह से झुक गई, और जब वो सीधी हुई तो बाजू की कोई दूसरी डांखड़ी का एक कांटा फूल की एक पत्ती में लगा और पत्ती चीरी गई, इसके मुंह से निकला आह, जैने इसको दर्द होता होवे ऐसा फील हुआ। इसने अपने आप को नेचर के साथ इतना मिक्सअप कर लिया कि फूल की पत्ती का अगर जिगर कट गया तो कहता है वो जिगर मेरा कट गया। यह है इल्म। विवेक इंसान को खाना पीना उठना बैठना हर चीज में विवेक है। सुन्नी मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इमाम इमाम मालिक हुआ है, आपको मालूम है 4 इमाम हुए हैं सुन्नियों के, उनको वो लोग शियों की तरह इमाम नहीं मानते। हम शिया लोग इमाम को खुदा का नूर मानते हैं, और सुन्नियों के अंदर इमाम उसको कहते हैं कि जो इल्म वाला होता है, बहुत बड़े आलिम को इमाम कहते हैं। उनमें 4 ऐसे आलिम हुए, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हनफी जिसको हम्बल कहते हैं, चौथा। तो हम्बली, हनफी, मालिकी, शाफी, ऐसा 4 उनके फिरके हो गए हैं कि जो इन आलिमों के पीछे लगे। इनमें जो इमाम मालिक थे वो हमारे खुदावंद मौलाना जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। मौलाना इमाम जाफर सादिक के पास से इलम सीखा था। इमाम मालिक के पास जब भी कोई मेहमान आता था तो पहले खुद हाथ धोते थे। नौकर चिलम की आफ्ताबा लेके आवे हाथ धुलाने के लिए, आपको मालूम है हम पहले जब भी जमीन पर बैठ के खाते थे तो चिलम की आती थी हाथ धुलाने के लिए। सब लोगों के साथ हाथ मिलाया करते हैं तो किसी के हाथ गंदे होते हैं, किसी के हाथ बीमारी वाले होते हैं, इसलिए खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धो लेने, ये भी एक इलम की चीज है, ये विवेक है। और एक दफा हजर इमाम ने अपने फरमान मुबारक में रसूलुल्लाह की इस हदीस का बयान भी किया है कि भाई रसूलुल्लाह की एक हदीस है, उसकी रिवायत चाहे कैसी भी है, हजर इमाम फरमाया, मगर अच्छी चीज है कि खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करो। तो मेहमान बैठे थे, नौकर आफ्ताबा चिलमसी लेके आया तो सबसे पहले इसने खुद ने हाथ धोए, फिर मेहमानों के हाथ धुलाए, और जब सब लोग खा चुके, नौकर फिर जब चिलमसी ले आया और सेठ के सामने लेकर गया, क्योंकि सबसे पहले उसने हाथ धोए थे। तो उसने कहा नहीं, पहले मेहमानों के। तो मेहमानों के हाथ पहले धुलाए गए, खाना पीना खा चुके। तो मेहमानों में से एक आदमी इस आलिम को पूछता है, माफ करना, खाने से पहले आपने हाथ धो लिए, विवेक तो ये होना चाहिए कि पहले मेहमान के हाथ धुलाने चाहिए। जो आपने बाद में शायद अपनी मिस्टेक समझ ली तो हमारे हाथ पहले धुलाए। कहता नहीं, मैंने मिस्टेक नहीं की, मैंने पहले हाथ इसलिए धोए कि मैं जल्दी से आप लोगों की प्लेटों में खाना डालूं। ये मेरा विवेक था कि पहले मैं हाथ धो लूं ताकि आप लोगों की प्लेटों के अंदर, आप लोगों के सामने मैं खाना सिलेक्ट करके रखता जाऊं। और बाद में मैंने इसलिए हाथ धोए हैं कि शायद हम लोग खा चुके हैं, मुमकिन है अचानक कोई एक मेहमान आ जावे, तो मेरे हाथ अभी तक धोए नहीं गए, मैं उस मेहमान के साथ खाना खा सकूं, इसलिए मैंने बाद में हाथ धुलाए हैं। ये इलम और विवेक है। 1946 के अंदर डायमंड जुबली हुई, मार्च की 10वीं तारीख को, रात को मौला ने अपने बंगले वालकेश्वर पे बहुत बड़ा डिनर दिया था, जिसके अंदर सारे हिंदुस्तान के मोस्टली राजे महाराजे, गवर्नर, वाइसरॉय, सब बड़े आदमी थे, तकरीबन 800-900 जितने। हम लोग जो वॉलंटियर थे उधर जमात की तरफ से यूनिफॉर्म पहन के उनकी सर्विस में गए थे, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह वॉलंटियरों को बुलावे, प्लेटें जिनके हाथ में उठा के घूमते थे, मौला खुद अपने हाथ से ये अपने मेहमानों के राजाओं महाराजाओं की प्लेटों में उनको ऊपर रह के जिस तरह माँ खिलाती है इस तरह उनको खिलावे, और उनको कहे कि ये मेरे नाना यानी हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रीत है, ये विवेक है। विवेक हर चीज में है, हर चीज में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आदमियों के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, किसी के घर में कोई प्रसंग था, और उस जमाने के अंदर जुदी जुदी प्लेटें नहीं होती थी, एक ही बहुत बड़ा ट्रे या सिनिया या ऐसा कुछ बर्तन होता था, सब लोग खाते थे। रसूल नबी के सामने एक शख्स बैठा था, जवान आदमी, अभी जो घर का जो आदमी था जिसके घर में नबी साहब खाने के लिए गए थे, नेचुरली रसूल पाक तो गेस्ट ऑफ ऑनर थे, तो उसने अच्छे अच्छे गोश्त के टुकड़े नबी के सामने ज्यादा रखे थे और लोगों के सामने कम रखे थे, ये उसका विवेक था, क्योंकि नबी गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, नबी हैं। वो सामने बैठा हुआ जो जवान बच्चा था, जब भी नबी साहब किसी से बात करे तो वह लंबा हाथ करके तो नबी के साहब से बोटियां खींच ले। रसूल पाक ने एक दफा दरगुजर की, दूसरी दफा किया तो दरगुजर किया, तीसरी दफा किया, अब यहाँ ट्रेनिंग की, टीचिंग की, गुरु की, मुर्शिद की बात आ जाती है, क्योंकि हुजूर टीचर थे, हर चीज सिखाने वाले थे। आपने फरमाया ऐ लोगो, उसको संबोध के नहीं कहा फिर भी, ऐ लोगो तुम्हारे सामने जो चीज पड़ी होवे उसमें से खाओ, दूसरे के सामने से हाथ मत डालो। तो छोकरा समझ गया, ये विवेक कि जब किसी के साथ खाना खाने के लिए बैठे तो खाने के अदब आदाब हैं। ऐसी ही एक और महफिल थी जिसमें हुजूर खाना खा रहे थे, अभी शुरू ही किया था, एक आदमी को छींक आई। अभी छींक ऐसी चीज है कि जो रोके नहीं रुकती, सिवा के आपको उसके रोकने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस हो जाती है, हो जाती है। बगासा खाना, छींक खाना आप अपनी मर्जी से, अपनी विल पावर से तो रोक सकते हो, मगर आम लोग ये विवेक नहीं जानते। अरे मुंह खोल के छींक मार दी, या कोई खांसी करता है तो मुंह खोल के खांसी कर दी, क्योंकि अविवेकी आदमी जिनमें विवेक एटिकेट नहीं होता उनको इन चीजों का पता नहीं। हर चीज को सिखाने के लिए गुरु चाहिए। ये इस किस्म के जो बिहेवियर्स हैं ये माता पिता सिखाते हैं, कभी माता पिता नहीं सिखाते तो धार्मिक टीचर उनको सिखाना चाहिए, मिशनरियों को सिखाना चाहिए, और हमारे पीरों ने ज्ञान में सिखाए हैं, सब रीत भात सिखाई है। उसको छींक आई, जोर से छींक मारी, उसके नाक और मुंह में से सब मॉइस्चर निकल के जो खाना था उसके ऊपर गिरा, कुछ रसूल पाक के हाथ मुबारक के ऊपर गिर गया। नबी खाने से खड़े हो गए, उठ के खाना छोड़ दिया, क्योंकि खाना सारा नापाक हो गया। मिंबर के ऊपर शाम के वक्त नमाज पूरी करने के बाद वाज के लिए मिंबर पे चढ़ के नबी साहब ने विवेक के ऊपर वाज फरमाई। आज एक आदमी खाना खाते वक्त छींका, उससे दूसरों का खाना भी खराब किया। जब छींक आवे तो मुसलमानों तुम अपने मुंह के सामने कपड़ा रख लो, कभी जल्दी से कपड़ा नहीं ले सके तो अपने हाथ की उल्टी तरफ अपने नाक के और मुंह के सामने रख के फिर छींक खाओ, ताकि दूसरों को तुम्हारी छींक से नुकसान ना हो। बगासा खाते वक्त भी नबी साहब ने फरमाया कि जब तुम बगासा खाओ तो उस वक्त बगासे के जोर से टेंशन से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि मुंह खुल जाने से आंखों के नर्व आंखों को बंद कर देते हैं। हो सकता है कोई मक्खी, कोई मच्छर, कोई और जानवर मुंह में गिर जावे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब भी तुम बगासा खाओ तभी भी अपना नाक और मुंह अपने हाथ की उल्टी तरफ से या रुमाल या कपड़े से ढांक लो। ये विवेक है। इसी किस्म की हजारों बातें हमारे जीवन में आती हैं। दारस जमा खाना कैसा आलीशान है, बाहर गांव के लोग आते हैं यानी दूसरे देशों के, तो अफ्रीका के जमात खानों का वखान करते हैं। हमारी दुखती हुई जगह जहां है ना, वो हमारे कपड़े हैं, हमारा बैठक, उठना बैठना, बैठने का तरीका, ये सब विवेक में आता है। मुझे तो ये जमातों का इल्म है, 40 बरस में वाज कर रहा हूँ, सिर्फ दार सलाम की नहीं लेकिन रहमत मौला की आधी दुनिया की जमातों की मुलाकात कर चुका हूँ। जमातों के अंदर भी, धर्म की जगह के अंदर भी जैसा हमें विवेक होना चाहिए ऐसा हमें नहीं, क्योंकि हमको हमारी सोसाइटी में विवेक नहीं। किस आदमी की हाजिरी में हमें क्या बोलना है, माँ और बाप बैठे हुए, हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि तुम कोई भूंडी बात, कोई ऐसा जोक नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे माता पिता की इज्जत की बात है, ये उनका विवेक है। कोई बड़ा आदमी चला जाता है और तुम छोटे बच्चे हो या जिससे छोटी उम्र के हो, तुम्हारे से बुजुर्ग है, उम्र में बुजुर्ग होवे, इल्म में बुजुर्ग होवे, हाजर इमाम की तरफ से उसको कोई सत्ता कोई होदा मिला हुआ है उसमें भी बुजुर्गी है, जैसे कि मुखी हैं, कमड़िया हैं, अमलदारी हैं, मिशनरी हैं, आप उनको सलाम करो, ये विवेक है। किसी आदमी को मिलो पहले याली मदद करो, ये विवेक है। रसूल पाक एक दफा बैठे थे मस्जिद के बाहर ओटे पे, 8-10 असहाब बैठे थे, बातें सीटें हो रही थी, एक आदमी भागा भागा आया, कहता या नबी, बस इतना बोला और हुजूर ने हाथ खड़ा किया। आपने फरमाया कैसे बेवकूफ आदमी हो तुम, आते ही या नबी पहले बोलो अस्सलामु अलैकुम, या नबी मैं माफी मांगता हूँ, वापस जाओ। उसको वापस भेजा और आया तो उसने झुक के सर को नीचा करके अस्सलामु अलैकुम या नबी, आपने वालेकुम सलाम फरमाया, हाँ अभी बात करो। तो ये एक विवेक है। हम किसी भी भाई बहन को मिले एक दूसरे में आपस में हम याली मदद करते हैं, बाज आते आदमी हैं उनको बोलो याली मदद, वो नहीं कहेंगे मौलाली मदद, बेवकूफ आदमी है, अविवेकी आदमी है, उसको किसी ने शायद नहीं सिखाया, और ये भी पॉसिबल है कि मजबूरी के कारण से बोलता हो, ये भी पॉसिबल है कि उसके दिल में याली का ईमान नहीं, तो इस बात को बेदरकारी समझता है। रसूलुल्लाह को यहूदी लोग सलाम अलैकुम कहा करते थे, सलाम अलैकुम तेरे ऊपर मौत होवे, सलाम का मतलब सलामती होवे, आबादी होवे, और साम का मतलब सलाम अलैकुम, तो नबी साहब कहते थे अलैकुम तुम पे मौत होवे, तुम पर, अलैकुम यानी तुम पर। जमा खाने के अंदर लोग आते हैं, कई ऐसे आदमी हैं कि यूं ही बस अंदर चले आते हैं उधर से, कोई ऐसे आदमी है कि दरवाजे के ऊपर खड़े रह के एक सेकंड तरास होल्ड करके कहते हैं हाय जिंदा, बहुत शाउट करके कहने की जरूरत नहीं, लेकिन अपनी छोटी सी आवाज से जरूर कहो हाय जिंदा। ये जमात खाने का विवेक है, ये एटिकेट है जमात खाने का। सीधा मुखी कमरिया के पास के ऊपर आओ, अगर दुआ से पहले आए हो तो बैठो मत, बैठो मत। सब सीधा मुखी कमरिया के पास के ऊपर आओ, अगर दुआ से पहले आए हो तो बैठो मत, बैठो मत। सबसे पहले मुखी कमरिया के पास पे जाओ, बाइयों में मुखी यानी कमरियानी के पास पे, और कोशिश करो हमेशा पांच मिनट दुआ से पहले आओ, पहले आओ। लेकिन आओ तो अंदर आके हाय जिंदा कह के पहले स्ट्रेट पाठ के ऊपर जहां हाजिर इमाम का तखत है, इमाम फरमाया मुखी कमरिया मेरी गादी पे बैठे हैं, उधर आके पहले सलाम भरो। कभी पैसा नहीं देना, हमारे मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं पैसे की। पैसे तो वो देते हैं जिनकी इच्छा होती है, पैसा वो देता है जिसको हुब होवे। एक सेंट रखो जो कि आजकल नहीं मिलता, पांच सेंट छोटे में छोटा सिक्का रखना है, रखो आपकी खुशी पड़े। पचास शिलिंग रखो आपकी खुशी पड़े, कुछ मत रखो। भले खीसे के अंदर 5,000 शिलिंग होवे, आपका मन नहीं चाहता पैसा देने को, मत दो, खाली हाथ जोड़ के सलाम जरूर करो। कमरिया कहते हैं नियत मुराद खाना वदान, ये सलाम है हाजिर इमाम को। दुआ करा के फिर जहाँ आपको बैठना है बैठ जाओ। मैं यहाँ नहीं था, मुझे पता लगा कि एक दिन मुखी साहब ने जमात को फरमाया अलहमदिया आगे आओ। बाज आदमियों ने अपनी रिजर्वेशन कराई हुई है सीट की कि मेरे को पंखे के नीचे ही बैठना, फिर भले आगे की सीटें कितनी भी खाली हो गए। ये बात बराबर नहीं, मस्जिद के अंदर ये चीज बराबर नहीं। यहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं, एक मुखी कमरिया की रिजर्वेशन है, वो भी अगर चाहे तो अपने पाठ को आगे पीछे हटा सकते हैं। मुखी साहब ने फरमाया अभी आगे आओ, तो कोई आगे नहीं आता था। और फिर जब मुखी साहब ने दम मारा नहीं आओगे तो मैं दुआ नहीं पढ़ाऊंगा, तो सब लोग आगे चले आए। विवेक ये है कि जैसे ही आप आओ आगे बैठना चाहिए, नजदीक में हाजिर इमाम के तखत के नजदीक बैठो। वो सिंबॉलिक तखत है, रियल तखत यहाँ है, गुनाह यहाँ मुआफ होते हैं। उस तखत के ऊपर गुनाह मुआफ नहीं होते, वहाँ आप अपनी मिन्नत मानता कर सकते हो, क्योंकि वो मिंबर है जिसके ऊपर चढ़ के रसूलुल्लाह वाज किया करते थे, जैसा कि ये मिंबर है मिशनरियों के लिए, गिनान बोलने वालों के लिए। लेकिन वो तखत वो सिंबॉलिक है, निशान है, हकीकत में तखत ये है दोनों साइड में के जहाँ मुखी कमरिया मुखियानी कमरियानी बैठते हैं, गुनाह यहाँ मुआफ होते हैं, उस तखत के ऊपर गुनाह मुआफ नहीं होते। इसलिए सलाम भरने के लिए यहाँ आओ, हाजिर इमाम के तखत के नजदीक बैठो, दूर मत बैठो। सिवा के जमात भर गई, वो लोग बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर जगह नहीं। बहुत दफा मैंने देखा है, मैं खुद कभी लेट आता हूँ तो देखता हूँ कि अंदर जमात खाने में काफी जगह होती है, लेकिन लोग सीढ़ी के ऊपर खड़े हैं। वो ऐसा समझते हैं कि खलल होएगा, नहीं, बल्कि वो अविवेकीपना है, उसमें विवेक नहीं है कि जमात खाना के अंदर जगह है और तुम बाहर दादर के ऊपर खड़े हो, वो बराबर नहीं। अंदर आओ, अंदर आओ। अलबत्ता लोगों को तकलीफ दे के उलंग पुलंग के छलांग मार के इधर बैठना वो ठीक नहीं, इसीलिए जमात को आगे बैठना चाहिए ताकि लेट आने वाले पीछे अपनी अपनी जगह के ऊपर बैठे। ये जमात का विवेक है। जाओ कभी जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, देखो मुसलमान हमसे ज्यादा विवेकी हैं, और हमको उनके पास से वो चीजें सीखनी चाहिए। कई लोग मुखी कमरिया के पास दुआ कराते हैं तो वो ऐसा ही कतार खड़े रहते हैं, उधर आके झुक जाओ, रुकू करो। नमाज के अंदर घुटनों पे हाथ रख के हम रुकू करते हैं, इतना झुक जाओ मुखी कांवड़िया के सामने कि तुम घुटनों के ऊपर हाथ रख के जितना झुक सकते हो इतना जरूर झुकना चाहिए, क्योंकि इमाम की गादी है। वो मुखी कांवड़िया को नहीं झुकते, हाजिर इमाम के नूर को झुकते हैं। दो हाथ बांध के दुआ कराओ, मुखी का हाथ दो हाथों में लो। कई लोग तो ऐसा टिप के साथ टिप लगा के चले जाते हैं जैसे कनेक्शन हो गया। ये विवेक नहीं, ये बेअदबी है। मुखी का हाथ हाजर इमाम का हाथ है, कांवड़िया का हाथ पीर का हाथ है। इमाम के फरमान में है कि मुखी मेरा सीधा हाथ है, कांवड़िया मेरा ढाबा हाथ है। इसी तरह से मुखिया नहीं कांवड़िया नहीं। हम हाजर इमाम के हाथ को ऐसा खाली इशारा करके हम समझते हैं कि हमारी दुआ हो गई। ये छोटी छोटी बातें हमारे ईमान को ऊंचा उठाने वाली हैं। ये चीजें विवेक में आती हैं। विवेक हमेशा छोटी चीजों में शुरू होता है, जैसा माँ बच्चे के साथ बैठ के उसको खाना सिखाती है। अभी बच्चे की उंगलियां गीली हो गई सालने से, तो वो अपने कमीज के साथ ऐसा साफ कर लेता है, कमीज दाग वाली हो गई। माँ कहती है ना 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 ऐसा नहीं, बाजू में टुवाल रखती है, इसके साथ हाथ साफ करो, देख तेरे कपड़े चाकू हो गए। माँ उसको विवेक सिखाती है। और कभी बच्चे की नाक में से पानी निकल रहा है क्योंकि गरम गरम खाना खाया, तो बच्चा ऐसा नाक साफ कर लेता, माँ कहती नहीं 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 ये देखो ये टुवाल ये रुमाल के साथ साफ करो, ऐसा साफ मत करो। ये छोटी छोटी बातें जो माँ को सिखानी चाहिए बहुत जरूरी है, और माँ को हर माँ को सिखानी चाहिए। जो माँ विवेकी होवे तो सिखावे ना, अगर माँ ही फूहड़ और जाहिल होवे तो कौन सिखावे। फिर दूसरे नंबर के ऊपर या बाप सिखावे या स्कूल में धार्मिक टीचर सिखावे, और जमातों के अंदर मिशनरी सिखावे या पीर सिखावे। मगर हमको हमारे जीवन में ये सब चीजें विवेक में आती हैं। अगर इमाम के साथ बात कर रहे हो, हाथ बांध के खड़े हो, आंखें नजर नीची करो, एक विवेक की बात करता हूँ। माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के पट पट देखते मत रहो, माँ बाप के साथ आंख मिले फौरन अपनी आंख को नीचे करो, ये विवेक है। फिर थोड़ी देर के बाद माँ बाप को जरूर देख लो, लेकिन उसकी आंख में आंख डाल के उसको देखते मत रहो, ये बेअदबी है। नजर नीची रखो। कभी आप बात कर रहे हो और हाजिर इमाम बीच में बोले तो चुप रहो, अपनी बात को पूरा मत करो। लेकिन हाजिर इमाम अगर बोलता होवे और बीच में कुछ याद आ गया है तो बीच में कभी मत बोलो। बिल्कुल इसी तरह से ये विवेक बुजुर्गों के साथ भी है। बाप के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, किसी वडील के साथ जब ये बात करो तो ये विवेक है कि वडील कोई बड़ा आदमी जब बात कर रहा है तो बीच में टोको मत, उसकी बात सुनो। लेकिन तुम जब ये बात करते हो और कोई बड़ा आदमी बीच में बोलना शुरू करे तो तुम चुप हो जाओ। ये सब जो है विवेक विचार तो जड़े जो पूर्ण होवे भाग। अगर तुम खुश नसीब हो कि तुमको इलम की कदर है तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। नमाज पढ़ने का विवेक है। नमाज यानी हमारी दुआ जो है ये नमाज। हम इस्माइली लोग सूफी तरीके के हैं, हम शरीयती तरीके से नमाज नहीं पढ़ते कि एक किबला की तरफ मुंह करें। किबला चारों तरफ है। अल्लाह ताला ने कुरान में ये चीज फरमाई हुई है कि जिधर भी तुम मुंह करोगे उधर खुदा का चेहरा है, जिधर देखोगे उधर खुदा मौजूद है। ये सूफी तरीका है। कभी कभी आपको मुसलमान भाई पूछते तो आप उनको कह सकते हो, खुले दिल से कहो कि हम सूफी तरीके के लोग हैं, इसलिए मिलके हल्का बना के, हल्का कहते हैं राउंड मुंह रख के, क्योंकि सूफी लोग हल्का बनाते हैं, राउंड बनाते हैं, एक गोल दायरा सर्कल बना के बैठते हैं और बस सब लोग उसके पीछे बैठते हैं। इस तरह वो लोग अपना जिक्र और इबादत करते हैं। हम इधर हल्का इसी तरह से बनाते हैं, इधर वालों का मुंह इस तरफ है, उधर वालों का मुंह इस तरफ है, इधर वालों का उधर है, उधर वालों का इधर है। ये सूफी तरीका है। लेकिन फिर भी हमारे इस तरीके के सूफी तरीके के हिसाब में शरीयत से ज्यादा विवेक है और होना चाहिए। आप जब भी नमाज पढ़ो तो गर्दन झुका के रखो। कई लोग बैठे हैं इधर उधर देखते होते हैं, दुआ के अंदर इधर उधर देख रहे हैं, सजदा आ रहा है तो गर्दन अकड़ी हुई है, सर झुकता नहीं, सजदा नहीं करते। वो ये समझते हैं कि हम इबादत कर रहे हैं लोगों को ये दिखाने के लिए, ये ठीक नहीं। अपना सर झुकाओ बराबर, जितना झुका सकते हो झुकाओ, और इस तरह से अदब से बैठो कि जिस तरह से अदब से बैठ सकते हो, विवेक, जितना विवेक करोगे, जितना अदब करोगे, जितना एटिकेट करोगे, आपको उतना ही दुआ के अंदर मजा आएगा, मजा आएगा। गर्दन झुका के, भले आंखें बंद नहीं करनी ना करो, जहां सजदा करते हो वहां अपनी नजर रखो, इधर उधर मत देखो, बाजू वाला क्या करता है मत देखो, अपनी दुआ पढ़ो, अपनी नमाज पढ़ो। और जब मौला का नाम आवे, जितना झुक सकते हो जमीन तलक उतना झुक जाओ। वो जगह के जहां हम सजदा करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि नमाज पूरी होने के बाद अपना हाथ मुबारक वहां फिरा के उधर की डस्ट अपने मुंह पे फिराते थे। ये नबी साहब की आदत है। मुसलमान भाई भूल चुके हैं, इस्माइलियों ने इस चीज को कायम रखा है कि हम जहां सजदा करते हैं नमाज के बाद, उस सजदा, भले अभी ये चटाई है मगर फिर भी कुछ दूर तो है, जहां हमने सजदा किया है अल्लाह को, अल्लाह के नूर को, वो पाक जगह है। और हम ह्यूमिलिएशन के अंदर अपनी आजजी में नमनी खमनी जाहिर करने के लिए हम उधर की खाक लेके अपने मुंह के ऊपर मलते हैं, तीन वक्त मलते हैं, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन मुहम्मदन रसूलल्लाह, व अशहदु अन अमीरुल मोमिनीन अलीउल्लाह। ये हम उस जगह की के जहां सजदा किया है उधर की खाक अपने मुंह के ऊपर मलते हैं, खुदा के हुजूर में आजिजी के तौर पे, यानी ये खुदा का विवेक है हमारी तरफ से। दुआ करानी, दुआ पढ़नी, जमात खाने में बैठना, जमात खाने में उठना, जमात खाने में चलना, बच्चे मस्ती तूफान करते हैं, मावितर का फर्ज है उनको कहे जमात खाने में भाग नहीं होनी चाहिए। जब तलक दुआ की क्रिया वगैरह चल रही है, हमारे मुंह से एक लफ्ज तक निकलना नहीं चाहिए। गिनान सुनो, गिनान बोलने वाले के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसी के राग के ऊपर गिनान बोलो, साथ गिनान बोलो, मोटे आवाज से नहीं बोलते, आहिस्ते से बोलो, तो गिनान की तरस भी आएगी, गिनान सीखोगे भी, गिनान में दिल भी लगेगा, बरकत भी मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। हो सकता है किसी दिन अंतकरण के खिड़की खुल जावे तो किसी गिनान का मतलब अंदर रोशन हो जाएगा, मतलब रोशन हो जाएगा। गिनान का एक पाठ जीवन को बदला देता है। वजीर इस्माइल की जिंदगी गिनान के एक पाठ ने बदला दी, तब्जली मिशनरी उसकी जिंदगी गिनान के एक पाठ ने बदला दी। कई लोगों को गिनान के पाठ में से नूर का एहसास हो जाता है, अक्ल खुल जाती है, अक्ल में रोशनी पैदा हो जाती है, इल्म के दरवाजे खुल जाते हैं। गिनान ऐसी चीज है, गिनान सुनो, फरमान सुनो, गिनान साथ पढ़ो, तस्बीह के अंदर ख्याल रखो, ये सब विवेक विचार और इल्म की बातें हैं। ये चीजें फिर हमारे जीवन के ऊपर आती हैं। जीवन के अंदर खाना पीना, कपड़ा लत्ता, लोगों से मिलना गिलना, छोटे बड़ों की अदब, मान, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीजें विवेक में आती हैं। यहां से कल्चर और सिविलाइजेशन शुरू होती है। दुनिया के अंदर कल्चर और सिविलाइजेशन पैदा करने वाला धर्म है, मजहब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ रखते थे, कुछ असहाब बैठे थे, आपका एक नौकर कोई मैसेज लेके दूसरे गांव से चला आया, वो बेचारा सफर करके आया था, तरस से बेताब हो गया। फर्ज ये था कि सबसे पहले नबी को आके उधर का हाल बयान करे जिस काम के लिए गया था, तो अंदर आके सलाम किया नबी को और अपना मैसेज दिया। जैसे हुजूर ने मैसेज ले लिया, उसको फिर खाना वदान फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, तो जाके सामने मटका पड़ा था, उसने मटके में से पानी भरा, प्याला, मिट्टी का प्याला, और खड़े खड़े पीने लगा। हुजूर ने फरमाया ऐ अनस्थर, प्याला रख लिया। हुजूर ने फरमाया तुम बाहर से आए हो, तुम्हारा पित्ता गर्म हो गया है, लिवर तुम्हारा गर्म हो गया है, बदन गर्म है, ठंडा पानी पियोगे तुमको अंदर अल्सर हो जाएगा। अल्सर उस जमाने के अंदर अल्सर नाम नहीं था, लेकिन हुजूर ने फरमाया अंदर की लाइनिंग फट जाएगी, सबर करो। और खड़े खड़े पानी मत पियो, खास तौर पे जब बाहर से आए हो तो, क्योंकि तुम गर्म हो, जैसे ही पानी तुम्हारे मैदे में जाएगा, हलक से लेके मैदे आंकड़ों तलक सब नुकसान करेगा। ये विवेक भी सिखाया कि पानी किस तरह पियो। गिलास या प्याला लेके नबी साहब फरमाया, गट 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 करके एक ही सांस में मत पियो। हुजूर ने फरमाया, थोड़ा सा पानी पी के ठहरो, फिर दूसरा पानी पियो, कम से कम एक दफा जरूर ठहरो, बने तो दो तीन दफा ठहर ठहर के पानी पियो। ये पानी पीने का एटिकेट सिखाया। नाखून बड़े होंगे, हुजूर ने फरमाया उसके साथ बैठ के खाना मत खाओ, क्योंकि वो गंदा है, उसके नाखून बड़े हो गए। ये छोटी छोटी बातें हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छी हैं, हमारे माइंड के लिए भी अच्छी हैं। ये सिविलाइजेशन और कल्चर की बुनियाद है कि जिसमें से विवेकी और इलम वाले लोग पैदा होते हैं। खुदा की बंदगी करो, विवेक विचार पैदा करो, और विवेक विचार तो होवे जो पहले से तुमको किसी ने सिखाया होवे। पूर्ण भाग का मतलब ये है कि पहले से तुमको किसी ने सिखाया होवे तो तुम्हारे ज्ञान दृष्टि जागे, यानी ज्ञान हासिल करना भी उस खुशनसीब के इल्म, इल्म से चाहत रखने वालों को इल्म मिलता है। इसलिए हर शख्स के ऊपर, इस्माइली के ऊपर ये फर्ज है, इल्म पढ़ो, सीखो, अच्छी अच्छी बातें सीखो, अच्छी चौपड़ियों का वाचन करो, दीन में दुनिया में उसकी मदद होगी और सुखियाबाद होने। मौला आपकी पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दो जहान में खैर बरकत देवे, फरमान बरदार मोमन बनावे, बदियों बुराइयों गुनाहों नाफरमानियों से बचावे, आफते बलाएं दुश्मन दफा करे, मुसीबतें मुश्किलें दफा करे। मौला दीन दुनिया में अपनी पनाह में, अपनी छतर छाया में रखे, जहर बातुन दीदार नसीब करे।